मैं कहता हूँ बुद्धि के क्षेत्र की बात ही नहीं, आप बुद्धि शब्द लगा देते हैं। बुद्धि के क्षेत्र में तो आप समझा है, सीख रहा है, जो तो मेरा कुछ नहीं है, ये बुद्धि नहीं जानती, ये बुद्धि पूर्वक नहीं जानते, ये ज्ञान पूर्वक जानते हैं मेरा कुछ नहीं है। जैसे सॉल में बैठा हूं, आप भी बैठे हैं, इसे आप जानते हैं मेरा नहीं है, तो इसका चिंतन आपको कभी नहीं होता, जाके आप जानते हैं मेरा नहीं है। ये बुद्धि पूर्वक जो लगा दिया हिसाब किताब, यही गड़बड़ कर दिया। बुद्धि तो इंद्रिय विषय पर अपनी राय देती है, वो भी माने आपकी मर्जी न माने आपकी मर्जी, बुद्धि आपको मनवा नहीं सकती। बुद्धि बता देगी कि ये शरीर जैसा तुम्हारा अभी है लाला, आगे नहीं रहेगा, ऐसा पहले नहीं था, ये बुद्धि दृष्टि आपको दिखा देगी, लेकिन ज्ञान के प्रकाश में दिखाएगी, बुद्धि स्वयं नहीं दिखा सकती। उस ज्ञान के प्रकाश का आप आदर नहीं करते, बुद्धि दृष्टि का दुरुपयोग होता है, दुरुपयोग होता है जीवन में कहां उतर जाएगा भैया। बुद्धि तो दृष्टि है ना, बुद्धि को सुतः ज्ञान थोड़ी है, ऐसे इंद्रिय भी दृष्टि है, इंद्रिय को सुतः ज्ञान थोड़ी है। और आपके पास दोनों चीजें मौजूद हैं, आपको बुद्धि दृष्टि भी प्राप्त है, आपको इंद्रिय दृष्टि भी प्राप्त है। बुद्धि दृष्टि का प्रभाव जब होगा तब इंद्रिय दृष्टि का प्रभाव नहीं रहेगा, उपयोग रहेगा प्रभाव नहीं रहेगा। तो बुद्धि दृष्टि का प्रभाव क्यों नहीं होता, इसलिए नहीं होता कि आप इंद्रिय दृष्टि के प्रभाव को पसंद करते हैं। अब वो लाचन डाल देंगे मन के ऊपर, आजकल की आजकल शक्ति इस प्रकार की है, मन विचारेगा तो अपराध है नहीं। जिंदगी भर लड़की सुनती रहती है, ये मेरे मैया है, ये मेरा बाप है, ये मेरा भैया है, जिंदगी भर ठीक जानती है ये मेरी सहोदरा है, भैया जानता है मेरी सहोदरा बहन है, बहन जानती है मेरा सहोदरा भाई है, लेकिन जब पति को पसंद करती है तो छोड़ देती है, मेरा घर नहीं है। क्यों भाई, जिंदगी भर तो बात तो ठीक थी, मेरा तो था ही, क्यों पर नहीं भाई, अब मेरा संबंध पति से हो गया है, अब पति के घर में मेरा घर है। ऐसे ही जिनका संबंध परमात्मा से हो जाता है, वो तो ये बात जानते हुए भी कि भाई इसी संसार में उत्पन्न हुए, इसी में स्थित हैं, इसी से रहते हैं, जब वो परमात्मा से संबंध स्वीकार कर लेते हैं तब वो कहते हैं हम तो मेरा नहीं है भैया। तो परमात्मा का संबंध संसार के संबंध को नाश कर देता है, यह विधान। परमात्मा संसार को नाश नहीं करता, परमात्मा का संबंध, और परमात्मा का संबंध आप स्वीकार करते हो, परमात्मा नहीं कराता आपको, तो आप परमात्मा का संबंध स्वीकार करते ही नहीं, आप संसार का संबंध स्वीकार करते हो और परमात्मा को की चर्चा करते हो, तो चर्चा में आने वाला परमात्मा बिना संबंध के कैसे प्यार लगेगा, ये कठिनाई हो जाती है। ये तो जब आप चाहो तब आपके जीवन मस्ती आ सकती है, आप निर्द्वंद हो सकते हैं, आपको जन्मजात अधिकार है जीव शांति का, जीवन मुक्ति का, परम प्रेम का, यह आपका अधिकार को छीन नहीं सकता, पर आप ही अपने अधिकार को छोड़ दो तो हम क्या करें, और जिस पर अधिकार नहीं उस अधिकार मान लो। आज तक कोई भी ये नहीं सिद्ध कर सकता कि संसार पर मेरा स्वतंत्र अधिकार है ही नहीं, हो सकता ही नहीं, होगा ही नहीं, तो हमसे अधिकार छोड़ा जाता नहीं, और जो वास्तव में हमारा अधिकार है उसको हम पसंद करते ही नहीं। हमारा अधिकार है कि हम परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार कर लें,
स्वाधीन है। महत्व को स्वीकार कर लें, संबंध को स्वीकार कर लें, इसमें न शरीर की सहायता की जरूरत, न इंद्रियों की सहायता की जरूरत, न मन बुद्धि की सहायता की। अरे भाई आप विचार करके देखो, बुद्धि तो एक भौतिक तत्व है, प्राकृतिक है, तो प्राकृतिक तत्व के द्वारा अगर परमात्मा मिल जाता तो हाथ पैर से भी परमात्मा पकड़ लिया जाता है, और जो हाथ पैर से पकड़ लिया जाता है तो यंत्र से भी परमात्मा पकड़ लिया जाता है, तो यंत्र भी प्राकृतिक तत्व है। तो मन बुद्धि से कोई परमात्मा पकड़ा जाता है, परमात्मा पकड़ा जाता है अपने द्वारा, जहां बुद्धि की पहुंच ही नहीं है, मैं तक बुद्धि नहीं पहुंचती, यह तक बुद्धि रहती है, मैं का और परमात्मा का संबंध है, मैं का और है का संबंध है, यह का और परमात्मा का संबंध इस रूप में नहीं है कि आप यह के द्वारा परमात्मा को प्राप्त कर रहे हैं, इस रूप में नहीं है। हाँ, यह के द्वारा आप संसार की सेवा कर सकते हैं। देखो धर्मप्रिय महान भावों ने जंगल में मंगल कर दिया, जैसे लोग कलकत्ते मंगल में रहते हैं, यहां रहते हैं। आप सोच ये तो आलोक कर सकते हैं, पर आप संसार की सहायता के द्वारा परमात्मा को अपना मान सकते हैं, बिल्कुल गलत बात है। इस दृष्टि से महानुभाव विचार करें तो शायद आपको लाभ जरूर हो जाए। हार हिम्मत मत हारिए, निराश मत हो जाइए, अपने करने वाली बात सही समझ लीजिए। इसमें अंतर
अगर हमने गलती सोचा है तो
नहीं, सोचा सही है नहीं, आप फिर मेरी बात को सुना ही नहीं, सोचने कौन कहे। मैं कहता हूं कि सोचने से समझने से परमात्मा का कोई संबंध ही नहीं है, तुमसे परमात्मा संबंध है। तुम जिस बुद्धि के द्वारा संसार में कामयाब हुए, सफल हुए, जिस बल पुरुषार्थ के द्वारा संसार, उसी बुद्धि के द्वारा परमात्मा बनना चाहते हो, ये कैसे हो सकता है? अरे बाबा, बुद्धि का सहारा छोड़ो, शरीर का सहारा छोड़ो, धन का सहारा छोड़ो, परमात्मा से मिलने के लिए। ये नहीं कहता हूं मुझे धन दे दो, धन की निंदा नहीं करता हूं, मैं तन की निंदा नहीं करता हूं, मैं बुद्धि की निंदा नहीं करता हूं, पर जिस तन से, जिस धन से, जिस बुद्धि से आप संसार में भले आदमी कहलाए, उसी तन बुद्धि से आप परमात्मा के प्रेमी हो जाए, संभव नहीं, किसी काल में संभव नहीं है, किसी प्रकार से संभव नहीं। न तो किसी काल में संभव है, न किसी प्रकार से। कोरी कोरी बात इसलिए कहता हूं कि आप लोग तो पुराने सत्संगी है, सब जानते ही बूझते हैं, आपके हाँ में हाँ मिलाते ही मैं अपना भी नुकसान पहुंचा और आपको भी नुकसान से मुझे क्या फायदा
होगा।
क्योंकि यही प्रक्रिया है कि आप अपने द्वारा परमात्मा को पाने का प्रयास करें, पहले इस बात को विश्वास करें कि मुझे परमात्मा से मिलने के लिए न शरीर की जरूरत है, न इंद्रियों की, न मन की, न बुद्धि। और जो परमात्मा शरीर के द्वारा मिलेगा, मन के द्वारा मिलेगा, बुद्धि के द्वारा मिलेगा, वो यंत्र के द्वारा भी फिर मिलेगा, क्योंकि तो शरीर के द्वारा जो आप काम करते हैं वो यंत्र के द्वारा भी होता है सरकार, इसलिए वो अमेरिका वालों को मिलेगा, रूस वालों को मिलेगा, आपको कहीं मिलेगा। और जो परमात्मा आपको अपने द्वारा मिलेगा वही मनुष्य मात्र को मिलेगा, तो मुझे भी मिलेगा, आपको मिलेगा, कितने भाई बहन बेटे सबको मिलेगा, क्योंकि परमात्मा कहते ही उसको है जो सबको मिले, उसका नाम परमात्मा नहीं है, किसी को मिले किसी को न मिले वो कुछ और होगा, वो परमात्मा नहीं होगा। तो आप अपने द्वारा परमात्मा को पसंद कीजिए, अपने द्वारा परमात्मा के शत्रु को स्वीकार कीजिए, आपको परमात्मा जरूर मिल जाएगा भैया, जरूर मिल जाएगा। तो कृपा रावरे कीजे, यहां साधन के अभिमान का त्याग है, अपने अधिकार का त्याग है। सजन शुद्ध ज्यो जानो ज्यो लीजिए, मेरा कोई अधिकार नहीं है, आप जैसे चाहे मेरी सुध लें, मेरा कोई और नहीं है। तो साधन के अभिमान का त्याग, वैसे तो वो श्री कृष्ण की नित्य प्रिया हैं, तो उन्होंने गोपियों की भांति परकिया भाव की बात पसंद की। परकिया भाव में विशेष त्याग है, परकिया अपने पति पर अपना कोई अधिकार नहीं मानती, और सुखिया अपने पति पर अपना अधिकार मानती है, जैसे रुक्मिणी जी। तो मालूम होता है कि मीरा जी बिल्कुल इस युवक की गोपी हैं, कहती हैं मेरा कोई अधिकार नहीं है, आप जैसे चाहें मेरी सुध लें। ये आत्मीय संबंध की विलक्षणता है, मेरा कोई और नहीं है। आगे दिन में मुझे भूख नहीं लगती, रात को मुझे नींद नहीं आती, इसका अर्थ क्या है? मीरा जी प्राण धर्म से ऊपर उठ गई, भूख लगना प्राणों का धर्म है, और नींद आना ये कारण शरीर का धर्म है, कारण शरीर से भी ऊपर उठ गई। अब देखिए उसके बाद तुरंत कहती हैं यह है तन, मानो अब शरीर से अलग है बिल्कुल, पल पल छीजे, छीज रहा है। क्या हो रहा है, कैसे, क्या छीज रहा है? ये जो गुणमयी माया से रचा हुआ जो शरीर था वो अब प्रेम तत्व से में विलीन हो रहा है, प्रेम से निर्मित हो रहा है, यानी गुणमयी माया जो थी उसका प्रभाव नाश हो रहा है, और भगवान की जो योग माया है उसका प्रवेश हो रहा है। हमको ये अर्थ समझ में आता है, यह तन पल पल चीजें। अब मीरा जी गुणातीत हैं, देहातीत हैं, तुरंत उसके बाद उन्होंने तुरंत ही जो कह दिया, मीरा के प्रभु गिरधर नागर मिल बिछुरन नहीं कीजे, यानी आप मुझे मिल गए अब वियोग न हो, ये उनका अंतिम वाक्य है। और सुनते हैं कि उन्होंने किसी ने फिर उनके शरीर को नहीं देखा, भौतिक शरीर को नहीं देखा, और कानपुरा के तार में से, मंदिर की दीवार में से, श्री विग्रह में से मिल विसरण नहीं कीजे, मिल विसरण नहीं कीजे, मिल विसरण नहीं कीजे, ये ध्वनि बहुत देर तक होती रही। किसी इतिहासकार ने ये नहीं कहा कि मीरा जी का अंत्येष्टि संस्कार हुआ था दुर्गापुरी में, ऐसा किसी ने नहीं कहा। उनका भौतिक शरीर भी प्रेम तत्व में विलीन होकर अपने प्रेम आश्रित से अभिन्न हो गया। तो इसमें त्याग का भी दर्शन है, अनुराग का भी दर्शन है, योग का भी दर्शन है, बोध का भी दर्शन है, सभी बातें आ गई। बोध भी है, योग भी है, अनुराग भी है, त्याग भी है। ये भगवती मीरा जी का अंतिम पद है। इसको आखिरी पद बताते हैं खोज करने वाले लोग, इससे ये स्पष्ट ही है कि जो एकमात्र प्रभु को ही अपना स्वीकार करता है और ये अच्छी तरह जानता है मेरा कोई और नहीं है, और ये भलीभांति मानता है प्रभु मेरे, एक बात जानने की एक बात मानने की, मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये बात जानने की है, ये मानने की नहीं है। और प्रभु मेरे अपने हैं, ये मानने की है, ये जानने की नहीं है। तो जानने से पराधीनता की, सर्व दुखों की, अशांति की निवृत्ति होती है, और मानने से अखंड स्मृति की, अगाध प्रियता की प्राप्ति होती है। ये साधकों का अनुभव है, ये जीवन का सत्य है। इसलिए मनुष्य में दोनों प्रकार की शक्तियां हैं, जानने की भी है, मानने की भी है। एक जो स्थूल शक्ति है करने की, वो भगवत नाते काम करने की है, वर्तमान काम करने की है। इसको भक्त लोग इसे पूजा कहते हैं और कुछ लोग इसको कर्तव्य कहते हैं, कुछ लोग इसको धर्म कहते हैं। तो कर्तव्य का उत्तर पक्ष जो है, धर्म का जो उत्तर पक्ष है, वो योग है। क्यों? कर्तव्य पालन से मानव राग रहित होता है, विद्यमान राग की निवृत्ति हो जाती है। और क्योंकि कर्तव्य का दूसरा अंग है अपना अधिकार त्याग, उससे नवीन राग की उत्पत्ति नहीं होती। तो विद्यमान राग निवृत्त हो गया, नवीन राग उत्पन्न नहीं हुआ। और राग में बाधा पड़ती है तभी क्रोध उत्पन्न होता है, तो क्रोध भी नहीं होता। तो राग और क्रोध से रहित होने से योग की प्राप्ति होती है। अब ये देखने में ऐसा लगता है कि इसका कोई अजीब, क्या अजीब आदमी है, कहते हैं साहब राग और क्रोध रहित होने से योग की प्राप्ति होती है। क्योंकि अधिकार छोड़ने से और अधिकार देने से मनुष्य फ्री हो जाता है। फ्री की हिंदी क्या होगी? स्वतंत्र हो जाता है, स्वाधीन हो जाता है। अधिकार देने से भी स्वाधीन हो जाता है, अधिकार छोड़ने से भी। फिर उसका संसार से कोई संबंध रहता ही नहीं, क्योंकि जिसका देना था दे दिया, लेना था छोड़ दिया, संबंध क्यों रहेगा? कहना चाहिए कि वो जीवन मुक्त हो जाता है। और वैसे देखा जाए वैज्ञानिक दृष्टि से तो कर्तव्य के अंत में योग की प्राप्ति हो जाती। योग, योग माने अपने में जो अपना प्रियतम है उसके साथ मिलन, एकता, समीपता, अभिन्नता। मिलन के तीन श्रेणी हैं। पहली श्रेणी है समीपता, दूसरी एकता, तीसरी अभिन्नता। इसलिए पहली श्रेणी को योग कहते हैं, दूसरी को बोध कहते हैं, तीसरी को प्रेम कहते हैं। तो मानव जीवन के विकास की जो चरम सीमा है वो योग, बोध और प्रेम की प्राप्ति में है, भोग मोह आसक्ति की निवृत्ति में है। इसी का मूर्तिमान चित्र श्री भक्तिमती मीरा जी का जीवन है। उन्हें योग बोध प्रेम प्राप्त हो गया, वो तो अविनाशी तत्व है योग बोध प्रेम, वो तो प्रभु की ही महिमा है। योग भी प्रभु की महिमा है, बोध भी महिमा है, प्रेम भी महिमा है। क्या प्रभु का ही स्वभाव है, उसी से मीरा जी अभिन्न हो गई। और उसी इन्हीं तीनों की एकता का नाम राधा तत्व भी है, सीता तत्व भी है, गौरी तत्व भी है। अनंत सखियां राधा तत्व से, गौरी तत्व से, सीता तत्व से विलीन होकर अनंत परमात्मा के साथ अभिन्न होती हैं, ऐसा प्रेमियों का मत है। ज्ञान की तो कर दी ना बोध, बोध माने ज्ञान, योग बोध प्रेम एकता, उस परमात्मा के साथ एकता बोध, समीपता योग अभिन्नता प्रेम ज्ञान तो एक प्रकाश है ना, भक्ति एक रस है, योग एक सामर्थ्य है। यही सब को चाहिए, सामर्थ्य भी चाहिए, ज्ञान का प्रकाश भी चाहिए, प्रेम का रस भी चाहिए। यही मनुष्य की मांग है। क्यों, ज्ञान के बिना तो कोई स्वाधीन हो ही नहीं सकता, और स्वाधीन हुए बिना प्रेमी कैसे होगा, उदार कैसे होगा। पराधीन तो प्रेमी होते नहीं, पराधीन तो उदार होते नहीं। और वैसे अगर देखा जाए तो मनुष्य की जो मांग है वही भगवान के का वर्णन है, उसी तरह का। जैसे भगवान को लोग कहते हैं परम उदार हैं, परम प्रेम से परिपूर्ण हैं, रस से परिपूर्ण हैं, अविनाशी हैं, स्वतंत्र हैं। तो जैसे परमात्मा अविनाशी है तो मनुष्य को अविनाशी जीवन चाहिए, परमात्मा स्वाधीन है तो मनुष्य को स्वाधीनता चाहिए, परमात्मा परम उदार परम प्रेम से भरपूर है तो प्रत्येक मनुष्य को उदारता और प्रेम भी चाहिए। तो जो परमात्मा की महिमा बताई जाती है, जो परमात्मा के विशेषण बताए जाते हैं, उन्हीं की मांग मनुष्य को होती है। अब वो मांग संसार के द्वारा पूरी नहीं हो सकती, न किसी वस्तु से, न किसी योग्यता से, न किसी सामर्थ्य से। इसीलिए ये बात कही जाती है कि भाई प्रभु को अपना मानो, प्रभु को पसंद करो, प्रभु के होकर रहो, तो क्यों, तो वो मांग पूरी हो जाएगी। किसी भी सामर्थ्य के द्वारा, योग्यता के द्वारा, वस्तु के द्वारा मनुष्य स्वाधीन नहीं हो सका, अविनाशी जीवन नहीं पा सका, रसरूप जीवन नहीं पा सका। इसलिए विवश होकर ये कहना पड़ता है कि जगत से परे, देह से अतीत अविनाशी जीवन है, स्वाधीन जीवन है, रसरूप जीवन है, ये कहना होता है। तो विवेकी जन उसको देहातीत जीवन कहते हैं और प्रेमी जन उसको भगवत प्राप्ति का जीवन कहते हैं। नहीं, प्रेम प्राप्त होने का विश्वास हो ही जाता, विश्वास तो विश्वास हो जाता कि बोध हो जाता है। प्रेम की जगने से पहले जो उसको विश्वास, अगर जिसको अपना माना था उसमें जब प्रियता उदय हो गई तो उससे दूरी भेद भिन्नता रहती है क्या। तो मानना सदैव मानना ही रह जाए ऐसा नहीं होता, मानना प्राप्त होना हो जाता है। मानव के व्यक्तित्व का जो अंतिम विकास जो हो सकता है वो तीन रूप में हो सकता है, योग के रूप में, बोध के रूप में, प्रेम के रूप में। और इसके चरम के विकास की कोई चरम सीमा है ही नहीं सकती। योग कर्तव्यपरायणता से प्राप्त होता है, असंगता से भी, आत्मीयता से भी।
विश्वासियों का योग होता है आत्मीयता से, विवेकियों का होता है असंगता से, और भौतिकवादियों का होता है कर्तव्यपरायणता से। क्यों कर्तव्यपरायणता से भी मनुष्य राग रहे तो कर फ्री हो जाता है, असंगता से भी फ्री हो जाता है, आत्मीयता से फ्री हो जाता है। अब जैसे कि ना अब व्यवहार में रहते हैं ना, उन्हें ऐसा वो लड़की शादी हो गई, क्या हो गया उसको, उसका संबंध अमुक व्यक्ति के साथ हो गया, वो उसका पति है, वो उसकी पत्नी है। लड़के की शादी हो गई तो कहीं पत्नी है, लड़के की शादी हो गई वो लड़की के अंदर पति है, तो पति के साथ संबंध हुआ, पहले स्वीकार किया संबंध, आत्मीय संबंध अपने हैं, तो वो योग कहलाता है। ऐसे ही परमात्मा के साथ आत्मीय संबंध, ये भी योग है, प्रभु अपने हैं, ये योग है, विश्वासियों का योग है। और तीनों संसार से अतीत, कर्म चिंतन स्थिति से अतीत में जिसका नित्य वास है वो ज्ञान के द्वारा योग है, और कर्तव्यपरायणता के बाद भी जब संसार संबंध नहीं रहा तब भी योग है। तो तीनों प्रकार से संसार के संबंध का नाश है। भगवान को मानकर चलो तो, और ज्ञान के प्रकाश को अपनाओ तो, और कर्तव्य का पालन करो तो। तात्पर्य कहने का हुआ कि संसार के संबंध का जो त्याग है इसी का नाम योग है। ऐसी कोई तीसरी चीज बीच में नहीं है कि संसार के संबंध को तोड़ करके अपने और परमात्मा बीच में कोई और दूरी हो, फासला हो, किसको नहीं है। यहां संसार के संबंध का त्याग हुआ कि परमात्मा के साथ योग हुआ, चाहे प्रियता को लेकर, चाहे बोध को लेकर, चाहे समीपता को लेकर।
योग संबंध का एक ही स्वरूप हुआ
मेरे जानते हुए, संबंध से भी योग होता है ना। योग तो तीनों का फल है। अब देखने भगवत गीता के 18 अध्याय, हर अध्याय के नाम फल अमुक प्रकार, विषाद योग, उन्होंने कहा अमुक योग, गुणामुक योग, योग ही लगाया सबने, लगाया कि नहीं। तो योग माने जो यहां सब साधनों की एकता हो जाए। तो चाहे आप कर्तव्य निष्ठा को लेकर चलें, चाहे आप असंगता को लेकर चलें, चाहे आप आत्मीयता को लेकर चलें, और चाहे तीनों को मिला के चलें, क्योंकि कर्तव्य परायणता असंगता के साथ भी है, आत्मीयता के साथ भी है, और असंगता आत्मीयता के साथ भी है, और आत्मीयता में भी असंगता है, क्योंकि किसी की असंगता से ही ना किसी की आत्मीयता हुई है। पहले किसी का संग रहित तो किसी ने किसी को देखा ही नहीं, किसी ने अपने को संग रहित नहीं देखा, तो असंग होकर भी आत्मीयता भी असंग होकर ही प्राप्त होती है, और स्वाधीनता भी असंग होकर ही प्राप्त होती है, और विश्राम भी असंगता से ही प्राप्त होता है। तो चाहे असंगता को, चाहे संसार के संबंध का विच्छेद को, एक ही बात है, भाषा का भेद है, वस्तुचित वास्तविक बात एक ही है। कोई कहे मैं सब संसार से असंग हो गया, कोई कह दे मैंने संसार संबंध तोड़ दिया, कोई कह दे मैंने भगवान संबंध जोड़ लिया, फर्क क्या हुआ। अरे भगवान से जोड़ लिया तब भी संसार संबंध नहीं रहा, और असंग हो गया तब भी संसार संबंध नहीं रहा, भैया जो कुछ देना था तो दे दिया, लेना मैंने छोड़ दिया तब भी संसार संबंध नहीं रहा। तो कर्तव्य परायणता से भी संसार के संबंध का त्याग होता है, और असंगता से भी संसार के संबंध का त्याग होता है, और आत्मीयता से भी संसार के संबंध का त्याग होता है। तो संसार के संबंध का त्याग तो तीनों प्रकार से हुआ, अतः तीनों ही प्रकार से योग की प्राप्ति हुई। और जब योग की प्राप्ति हो जाती है तो योग की पूर्णता में बोध, और बोध की पूर्णता में प्रेम, ये स्वतः सिद्ध है। नहीं, वो तो जिज्ञासु के लिए बोध मुख्य है और भक्त के लिए प्रेम मुख्य है और बीच का जो मध्यम श्रेणी का उसके लिए योग मुख्य है। तीनों दृष्टियों से तीनों के लिए एक एक चीज मुख्य है, लेकिन मुख्य रहते हुए दो चीजें उसमें सम्मिलित हैं। बोध पहले होगा पीछे प्रेम होगा योग होगा, योग पहले होगा तो पीछे बोध होगा प्रेम होगा, प्रेम पहले होगा तो योग बोध भी होगा। ऐसा तो जीवन एक है।
बोध
माने वास्तविकता, जो सत्य है उसका उसकी प्राप्ति, सत्य की प्राप्ति को है बोध को। जैसे अपने को शरीर मान के रखना ये बोध नहीं है ना, ये भूल है, ये प्रमाद है, ये प्रमाद की निवृत्ति का नाम बोध है। बोध माने भूल रहे कौन है, वो नहीं विवेक है, वो नहीं। इस शब्दों के जाल में मत खेलो यार, असली पर पकड़ो। ये तो शब्द जाल है, इसमें फंसा तो फंसा। नहीं, हाँ ठीक कहते हैं आप, एक तरह से मांग नहीं रह जाती। और इसी को मैंने बताया ना आपसे कि संसार के संबंध तोड़ने मात्र से ही योग की भी प्राप्ति होती है, बोध की भी होती है, प्रेम की भी होती है। वो एक स्वाभाविक है, जहाँ संसार का संबंध टूट जाता है वहां परमात्मा के साथ समीपता भी होती है, एकता भी होती है, अभिन्नता भी होती है। संसार का संबंध तोड़ना तो साधन रूप वाक्य है ना, सिद्धांत वाक्य तो है नहीं।
जाना है तो जी जाना तो नहीं, जब मन का है जब मन से समझ लेके तोड़ देना है उसकी बात है मेरा लीजिए।
हाँ, इसी से आपको निर्विकारता प्राप्त होगी, चिर शांति प्राप्त होगी, जीवन मुक्ति प्राप्त होगी, भगवत प्रेम की प्राप्ति होगी, भगवत प्राप्ति होगी। ऐसा सोचिए, संसार की सहायता के बिना अगर आपको अपने जीवन का बोध हो जाए तो फिर क्या अमर हो गए। और संसार की सहायता से जब तक जीवन मालूम होता है तब तक तो मृत्यु के क्षेत्र में रहते हैं ना। तो शरीर के रहने का नाम जीवन नहीं है, शरीर बना रहे इसका अर्थ जीवन नहीं है, वो तो बदलता रहता ही है, जन्म और मृत्यु का क्रम चलता ही रहता है, इसको जीवन नहीं कहते। शरीर से संबंध टूटने के बाद जीवन की प्राप्ति होती है। अगर आप ये अनुभव कर सकें कि बिना शरीर के भी मेरा अस्तित्व है, वो वह मुक्त पुरुष फिर क्या है, और परमात्मा का अस्तित्व है तो भक्त हो गए, मेरा अस्तित्व तो मुक्त हो गए, मुझे कुछ नहीं चाहिए तो शांत हो गए, मेरा कुछ नहीं है तो निर्विकार हो गए। क्या अपना मन कभी स्थिर नहीं होगा जब तक कि मन अपना है। भगवान अपना हो तो मन भगवान में विलीन हो सकता है। हाँ, हम अपने मन को अपना मान करके कभी स्थिर नहीं कर सके, न कर सकते हैं, कोई कहते ही रहते हैं, स्थिर बलपुर लगाते रहते हैं, अपने आप हटता रहता है, बलपुर हटाते रहते हैं, अपने आप लगता रहता है, ये द्वंद्व रहता है। संसार के संबंध का जो प्रभाव है सच पूछिए तो उसी का नाम मन है। मन कोई स्वतंत्र पदार्थ नहीं है। संसार के संबंध का प्रभाव यानी संसार का जो आकर्षण होता है ना, तभी मालूम होता है वहां मन है। जी चाहता है कि ये मिल जाए, जी चाहता है ये हो जाए, जी चाहता है ये हो जाए, तब मन का भास होता है। अगर संसार के संबंध का प्रभाव नाश हो जाए तो मन नाश हो जाए। ऐसे ही परमात्मा के संबंध के प्रभाव का नाम ही साधना है, और साधना कुछ नहीं है। परमात्मा के संबंध का जो प्रभाव आ जाता है जीवन में, उसी को साधना कहते हैं।
थोड़ा सा
इस तरह
प्यारा लगता है मेरे को, उनका सुख भोग के आकर्षण का
सुख है ना, उसका त्याग। हाँ बात अच्छा है, मौज करो दोनों बातें, भोग भी करो योग भी करो, बहुत बढ़िया बात है, नाम चल जाएगा, चल जाएगा। भोग और संबंध तो ऐसा छोटा नहीं है,
भोग का त्याग
नहीं, भोग के आकर्षण का त्याग, भोग का त्याग नहीं कहा, सुख भोग और आकर्षण का त्याग, ये कहा है
सुख भोग के आकर्षण का त्याग।
हाँ हाँ तो भोग तो रहा ना साथ में,
आकर्षण का
त्याग
हाँ
वो एक साथ नहीं होगा ना। योग से भोग की रुचि नाश होगी, बिना योग के भोग की रुचि नाश नहीं होती, और बिना भोग की रुचि के नाश के योग नहीं होता। भोग का अर्थ क्या है? पराधीनता में भी जीवन है, रस है, सुख है, ये सुरक्षित बनी रहे, पराधीनता सुरक्षित बनी रहे, बढ़िया भूख लगती रहे, रुचिकर भोजन मिलता रहे, ये भोग हुआ। भूख भी लगती रहे, रुचिकर भोजन भी मिलता रहे, और खाने की शक्ति भी मिली रहे। नहीं तो ऐसे भी रोग होते हैं शरीर में कि भूख लगी है और खा सकते नहीं। एक रोग था महिला बेचारी को, प्यास लगती थी और पानी निकल नहीं सकते, होश था, बातचीत करती थी, कहते क्या होता है, किसी से बूंद पानी चला जाता थे, तो डॉक्टर ने कहा हम गले में छेद करके पानी डाल सकते हैं, तो राजी नहीं हुई। गले में कैसी तकलीफ हो गई थी,
वैसे रोगी बहुत जल रहे थे, थोड़ी दिन में
और दिन तो नहीं जल रहे थे। ये वैसे उनको ठीक वैसे थी, कोई और खास तकलीफ नहीं थी, एक आदमी का मृत्यु भी था उसे, उस दिन का शरीर छूटा। ये फैजाबाद की बात है, एक कार्यक्रम जज थे जलेश्वर वाले, उनकी पत्नी की बात है, राम रघुवीर जी की लड़ती थी बच्चे मिलते हैं उनकी बात। मतलब मेरे कहने का यह है कि अभी तो हम लोग सजग हैं, सावधान हैं, इतनी सामर्थ है कि विश्वास पूर्वक प्रभु को अपना मान लें, ज्ञान पूर्वक संसार का संबंध तोड़ दें। ये काम वर्तमान में करने का है, शीघ्र ठीक करने का है, देर करने का नहीं है। देर करने के बाद नवान कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं है, ये चेत में ही नाश हो जाए, फिर दिमागी खराब हो जाए, क्या हो जाए, क्या बदलता है, इसलिए शीघ्र शीघ्र ये अनुभव ही करना चाहिए। मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, प्रभु मेरे अपने हैं, सब कुछ प्रभु का है। चाहे मान के चलो प्रभु अपने हैं, सब प्रभु का है, चाहे जान के चलो मेरा कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, चाहे चारों को मिला दो।
आप विचार कीजिए, बहुत जरूरी बात है ये। और ये बात जिस वक्त देखिए हमारे पास देवी जी आई तो हमने उनसे पूछा कि तुम क्या चाहती हो, तुमने बड़े सीधे सरलता से ईमानदारी से कह दिया कि इतने बड़े संसार में मुझे कोई अपना करके नहीं मालूम होता। एक बात उन्होंने ये कही, दूसरी बात ये कही कि मैंने सोचा था कि जी मैं पढ़ लिख जाऊंगी, स्वावलंबी हो जाऊंगी, सदाचारी बनी रहूंगी तो मेरी मांग जो है पूरी हो जाएगी। तो वो भी मेरी नहीं हुई मांग पूरी, पढ़ लिख गई, सदाचारी बनी रही, समाज में सम्मान मिल गया, रोटी की सुविधा हो गई, फिर भी मैं इस अभाव का अनुभव करती हूँ कि कोई मेरा नहीं और मुझे कोई अपना चाहिए। ये बात उन्होंने कही। और अनीश्वरवादी वो नहीं थी, लेकिन ईश्वरवादी होते हुए भी ईश्वर से विद्रोह करती थी, लड़ती थी, तुमने मुझे क्यों बनाया, मैं कहा तुमसे कहने गई थी मुझे बनाना, और जब बनाया तो मैं जो चाहती हूं सो होता क्यों नहीं, इस तरह का विद्रोह रखती थी ईश्वर से। और कभी कभी तुम मनोविज्ञान की पंडिता हैं और ये भी कहें कि मैं अस्पताल में एक दिन गई तो मैंने एक मरीज को इतना इतना भयंकर दुख में पड़ा देखा कि वो घोर संकट में था, तो मुझे वो क्षोभ हुआ, हे सृष्टि के रचने वाले तू कैसा करुणामय है जो तेरी सृष्टि में इतना दुख है। तो इस तरह से अनेक प्रकार से उनके जीवन पर एक ऐसा गहरा प्रभाव पड़ा कि मैंने पढ़ लिख कर भी पूर्ति तृप्ति मेरी नहीं हुई, रोटी खमा खाकर भी तृप्ति नहीं हुई, समाज में स्थान पाकर भी तृप्ति नहीं हुई, अब मुझे कोई अपना चाहिए। तो मैंने बड़ी डरती डरती जवान से कहा, दबी जवान से, बहुत डर के साथ, कोई जन मालूम क्या आंदोलन बगने भाई, मैंने कहा भाई कोई एक है तो है तो ऐसा, बोले ऐसा है उस पर मेरा विश्वास ही नहीं होता, ये उन्होंने कहा। तो मैंने कहा ठीक है, ये तो बात सत्य को विश्वास नहीं होता, बोले हाँ ठीक है, सरलता से उन्होंने ईमानदारी कह दिया। तो हमने कहा देखो वो हमारे मित्र हैं और हम भी उनसे प्रार्थना करेंगे, और तुम एक दफा ये तो कह दो कि तुम मुझे अपना विश्वास दे, मैं आपसे क्या निवेदन करूं, प्रभु की महिमा कि वही देवकी जी आज यूं कहती हैं कि जब मैंने ये पसंद किया तो उन्होंने मेरे करने वाली बात भी की और अपने करने वाली बात भी की। मुझे तो आश्चर्य होता है कि आप भगवान पर बात करते हैं और निर्जीव होकर बात करते हैं, ये निर्जीवता नहीं चलती इस पदम प्यारे, इसमें हृदय चलता है, जीवन चलता है। भगवान यदि है, मैं आपके लिए कहता हूं मेरे लिए तो है ही है, तो अभी भी वैसा ही है जैसा कभी था, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो गया है, उसकी महिमा नहीं घट गई है, वो कुछ बदल नहीं गया है, वो अभी भी वैसा ही है जैसा था, ऐसी बात नहीं है कि उसमें कुछ परिवर्तन आ गया हो। पर हम ओफो भगवान को जरा पसंद करते हैं क्या, चाहते हैं क्या? नहीं, मैं आपसे पूछता हूं, आप जो चाहते हैं वो नहीं मिलता है तब तक आप चैन से रहते हैं क्या? आपको चैन क्यों है? अगर चैन है तो साफ जाहिर होता है कि आप भगवान को भी चाहते नहीं है। नहीं, चैन को मिला, मान लो भगवान न मिले, हमें विधि न मालूम हो, हमें तरीका न मालूम हो, हम न जानते हो कहां है कैसे हैं, लेकिन जिस जो हम चाहते हैं वो बात पूरी नहीं होती तो आदमी को चैन से रहता है क्या जी? आप कैसे चैन से रहते हैं भाई, कैसे चैन से रहते हैं? अगर नहीं तो फिर आपका भगवान एक कल्पना है कोई आपकी अपनी, जरूरत हुई तो बैठकर भगवान की बात कर ली, जरूरत हुई अपना और काम कर ली। अरे आप सोचिए, किसी का लड़का खो जाए, उस माँ के हृदय को देखिए क्या दशा है, क्या दशा होती है, देखिए फिर तो क्या उतनी भी योग्यता हमें आप में नहीं है? क्या आप किसी चीज के लिए व्याकुल नहीं होते हैं? क्या होते हैं? ऐसी बात नहीं है कि आपके जीवन से व्याकुलता निकल गई है, ये नहीं है। जिस बात को आप पसंद करते हैं वो बात पूरी नहीं होती है, तो आप व्याकुल भी होते हैं, आप क्षोभित भी होते हैं, आप पूरी पूरी कोशिश भी करते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो परमात्मा सदैव सभी का है, उस परमात्मा से आप दूर कैसे हो गए? उसको आप भूल कैसे गए? कैसे भूल गए भाई? आप विचार कीजिए। तो आप ये जो सोचते हैं कि कोई तरीका बताएगा, कोई विधि विधान बताएगा और उससे मुझे परमात्मा याद आ जाएगा, तो टेक्निक हमको मालूम है, हम चेला बनाना जानते हैं, हमने बचपन में बनाए बहुत से चेले, और तुम वो बना सकते हैं और 12 वर्ष अटकाए रहे, ये बात थोड़ी कि नहीं जानते, पर वो पेशा हमने जरा ढीला कर दिया। क्यों? लोग फिर हमको पढ़ने लगते हैं, भगवान को भूल जाते हैं। आप देख लो, आंख खोल कर देख लो, जिन लोगों ने ज्यादा भगवान की बात सुनाई लोगों को, उन्होंने भगवान तो नहीं पकड़ा पर सुनाने वाले को कस के पकड़ लिया। तो जैसे कोई डूबने वाला खुद पकड़ लेता है तो बचाने वाले को डुबा देता है। आप विचार करके देखो। इसीलिए जब तक आप इस बात का ठीक अनुभव नहीं करेंगे, अगर आप ये मान के चलेंगे अरे भैया हम साधारण आदमी को भगवान कैसे मिल सकता है, तो आप भगवान की बात ही क्यों करते हैं? उन्हें अभी कैसे मिल सकता है, तो अभी बात क्यों करते हैं? भगवान कोई खेती है जो आज बोएंगे कल उपजेगा परसों मिलेगा? भगवान कोई ऐसा वृक्ष है क्या आज लगाएंगे 12 वर्ष में फलेगा? भगवान तो ऐसी चीज नहीं है। भगवान तो वर्तमान में मौजूद है, ज्यों का त्यों मौजूद है, जैसा सतयुग में वैसा ही त्रेता में, वैसा ही द्वापर में, वैसा ही आज, वैसे ही तुम्हारे लिए, वैसे ही हमारे लिए, वैसे ही सबके लिए।